ओम शांति। जो हमारी 16 कलाओं की सीरीज चल रही है उसमें जो फर्स्ट कला जो है भाषण कला, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स चिंतन चल रहे हैं। तो ऑलरेडी दो महारथियों सुशील भाई और डॉक्टर हिना के द्वारा हम सुन चुके हैं। इस पे आज मुझे दिया गया है कि भाषण करते समय क्या क्या न करें। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं ना, कई लोग जो भाषण देते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जिन्हें कहा जाता है आज के डेट में बहुत सारे हैं, तो वो भाषण करते समय ऐसा क्या करते हैं जो लोगों के दिल में छाप छप जाती है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को ले लो, या अलेक्जेंडर को ले लो, सिकंदर, महात्मा गांधी को ले लो, या जो भी बड़े बड़े नेताएं होकर गए हैं, उनके भाषण में इतना फोर्स होता है, इतनी पावर होती है कि अगर कोई व्यक्ति ना करना चाहे उस चीज को तो भी वो करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो भाषण एक ऐसी कला है, जैसे अलग अलग कलाएं होती है, तो इसमें भाषण करने की कला जो है सबसे महत्वपूर्ण कला इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा हम लोगों को जो अपना संदेश देना चाहते हैं या जो बताना चाहते हैं वो हम आसानी से उन्हें बता सकते हैं, और हमारे एक्सप्रेशन के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा हम उन पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जैसे भाषण कला, तो भाषण देखते करते समय हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से भाषण करते हैं, किसकी कौन सी स्टाइल होती है, किसकी कौन सी स्टाइल होती है। तो जैसे इसमें बताया गया था कि 21 पॉइंट्स निकालने हैं कि भाषण करते समय क्या क्या चीज नहीं करनी है। तो सबसे पहले भाषण करते समय नहीं करनी चीज जो है, केवल एक ही जगह नहीं देखना है, सब जगह देखना है, और जहां तक हो सके कम से कम एक दो सेकेंड हर एक के साथ आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए। नहीं देखना इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप गर्दन यहां से वहां घुमाते रहे, हर एक के साथ में आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं, वो नहीं देख रहा वो बात अलग है, लेकिन जो सामने देख रहे कम से कम हम उनको तो देख ही सकते हैं। उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति का अटेंशन कितना है, वो उस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बाबा जैसे मुरलियों में हमेशा कहते हैं कि अगर कोई कांध हिला रहा है तो समझ में आता है कि हाँ कुछ उसके दिमाग में जा रहा है। जरूरी नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन एक भाषण करने की कला में एक कला जो है, पॉइंट जो है कि क्या नहीं करना है, तो केवल एक ही जगह देखकर भाषण नहीं करना है, या केवल जमीन पर देखकर या पीछे की दीवार को देखकर ही भाषण नहीं करना है, किसी एक ही व्यक्ति की तरफ देखकर भाषण नहीं करना है। हमारी नजरें जो है सारे हॉल में सब जगह घूमती रहनी चाहिए जहां तक जा सके। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि भाषण एक ही जगह देख के नहीं करना है, हर एक की तरफ हमारा इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उससे हमें मालूम पड़ता है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें कि भाषण कभी भी पढ़कर नहीं बोलना चाहिए जहां तक हो सके। बाबा भी मुरली में हमेशा कहते हैं ना, अभी शायद 2 वीक पहले की मुरली में भी था कि भाषण जो करते हैं तो अगर आप भाषण देखकर बोलते हैं तो बोलने वाले की आबरू चली जाती है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है ना कुमारियों के लिए कि अगर छोटी सी कुमारियां हैं और आपको बड़ी स्टेज पर अगर हम भाषण करने के लिए बोलते हैं तो आप डरते तो नहीं हो, भाषण कर सकते हो। तो उसके लिए जो है प्रैक्टिस भी बहुत होनी जरूरी है, हम आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है, भाषण कभी भी पढ़कर या देखकर नहीं बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप कीवर्ड्स या जो बुलेट पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, वो कहीं पर आप नोट करके रख सकते हैं जहां से आप देख के बोल सके। जैसे जगदीश भाई के लिए भी हम देखते थे कि एकदम छोटी सी पर्ची लेकर आते थे और उस पर जो मेन पॉइंट्स है वो लिखे होते थे, उस पर से देख के वो बोलते थे। तो एक बार किसी ने उनको पूछा कि भाई साहब आप तो इतने महारथी हो, आपको इतना सारा नॉलेज है, फिर भी आप क्यों लिख कर लाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लिख कर लाता हूं कि ऐसा ना हो कि कभी कोई पॉइंट्स में भूल जाऊं, कभी कोई पॉइंट्स मिस हो जाए। कई बार ऐसे होता है कि हमें स्टार्टिंग में सब लगता है कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कई बार लोग प्रश्न वगैरह पूछते हैं तो फिर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है, तो हम कई बार होते हैं कि भूल जाते हैं, फिर हमको बाद में वो बात याद आती है कि अरे ये बहुत अच्छी पॉइंट थी और ये मिस हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कई लोग जिसे करते हैं, जैसे डॉक्टर सचिन तो नहीं करते, उनको तो सब कुछ याद रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक हो सके अगर कुछ किसी को लगता है, जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह भी होते हैं तो उनके सामने स्पीच होती है, हाँ, लेकिन उसमें से भी जो अच्छे मिनिस्टर्स होते हैं वो केवल एक सेकेंड पेपर को देखेंगे और बाकी जगह समय ऑडियंस को देखकर बोलते रहते हैं। रमेश भाई का एक बार अनुभव सुना था, उसमें उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताया था कि उनके कॉलेज लाइफ में कोई एक मिनिस्टर आया था भाषण देने के लिए, तो सारा भाषण पढ़ के ही बोल रहा था। और उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपको दो तीन बार खांसना है, रुकना है और एक दो घूंट पानी पीना है और उसके बाद फिर बोलना शुरू करना है। तो उसने वो भी पढ़ दिया उसमें। तो जो लोग थे सारे, मतलब रमेश भाई के उस समय कॉलेज में जो लोग भाषण सुन रहे थे, सभी ने खूब जोर से ताली बजाई। ये ओरिजिनल भाषण नहीं, कि जैसा लिखा हुआ ए टू जेड पूरा वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि भाषण जहां तक हो सके हम जो भी बोल रहे हैं पढ़कर नहीं बोलना चाहिए। की पॉइंट्स हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, आप याद रख सकते हैं या अपने हिसाब से जैसे आपको सहज लगे आप देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी जब ज्ञान सरोवर में आए थे तो उनके पास ऑलरेडी स्पीच थी लिखी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं स्पीच को नहीं बोलूंगा, देखकर नहीं बोलूंगा, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। या उन्होंने अपने हिसाब से जो उनके एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या वो इस संस्था को जिस ढंग से जानते थे, जितना जानते थे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, उस प्रकार से उन्होंने उसमें अपने भाषण में शब्द कहे। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि भाषण कभी भी देखकर नहीं बोलना चाहिए। नहीं, की पॉइंट देख सकते हैं, ऐसा नहीं। नहीं 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 और जो थर्ड पॉइंट जो है, भाषण करते समय जो है कोई भी सेंटेंस जो है आधा में नहीं छोड़ना चाहिए, सेंटेंस को पूरा करना चाहिए। हमारी बात जो हम बोल रहे हैं वो पूरा करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम बोलते तो हैं लेकिन ऑडियंस में से कोई कई बार प्रश्न पूछते हैं तो हम उनको जवाब देने लग जाते हैं और जो हमारा आधा जो बात होता है वहीं के वहीं रह जाता है। तो ऐसा जो है हाफ सेंटेंस कभी भी जो है आधे में नहीं बोलना चाहिए। हमें पूरा अटेंशन होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किस बात के ऊपर बोल रहे हैं। तो आधे में कोई भी ये नहीं छोड़ना चाहिए, बात नहीं छोड़नी चाहिए। बाद में फिर हमें याद आता है कि हमने इस बात को कवर ही नहीं किया, ये बात तो रह गई। ऑडियंस में से ही कई बार लोगों के बाद में संकल्प चलते हैं कि अरे ये देखो ये बात बोल रहे थे और ये आधे में ही भूल गए, आधे में ही छोड़ दिया इन्होंने। तो आधे में कोई भी बात नहीं छोड़नी चाहिए। तो पूरा अटेंशन होना चाहिए हमारा अपने ऊपर। भूल गए तो कोई ऑप्शन नहीं ना उसके लिए, लेकिन जहां तक तो कोशिश हो सके अटेंशन होना चाहिए खुद पे कि हम कौन सी बात को बोल रहे हैं। भले आप लोगों का जवाब दो कोई प्रश्न अगर पूछता है, लेकिन दोबारा अपने जो पॉइंट पे जो है थीम पे दोबारा आ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पीड। बोलते समय हमारी स्पीड जो है वो कैसी है, कितनी हम फास्ट बोल रहे हैं और कितना स्लो बोल रहे हैं। कई बार लोग इतनी फास्ट स्पीड में बोलते हैं कि सामने वाले को सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है कि ये क्या बोल रहा है, सारा ऊपर से बाउंसर चले जाता है। तो कई बार लोग इतना स्लो बोलते हैं कि सामने वाला सोचता है कि भाई बोलो तो बोलो बोल। क्यूरियोसिटी निर्माण हो जाती है कि भाई क्या बोलने वाले आगे करके। तो एकदम स्लो भी नहीं होना चाहिए और एकदम फास्ट भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे बताते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े रह के अकेले में भी, जैसे भी, जैसे मेरी भी स्पीड बोलने की काफी फास्ट है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं और जब बोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपनी नॉर्मल स्पीड में बोले, लेकिन वो प्रैक्टिस कर करके ही होता है। तो उसके लिए स्पीड पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा फास्ट भी ना हो ज्यादा स्लो भी ना हो। जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं या भाषण करने वाले होते हैं, अगर वो भाषण में कोई स्पीच या कोई सेंटेंस है अगर फास्ट भी पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वो केवल उतना ही सेंटेंस फास्ट में बोलते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल जो है उनका रेगुलर स्पीच चलती है, बीच बीच में बोलते हैं वो भी कई बार फास्ट, लेकिन उतना ही सेंटेंस जो एक दो वर्ड है उतना ही या वो फास्ट बोलते हैं। वो आगे के इसमें आएगा, आगे के पॉइंट्स में क्या नहीं करने में। तो ये है स्पीड में। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो आगे का जो पॉइंट दिया हुआ है कि कोई भी बात जो हम, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट जो है आधे में नहीं छोड़ना है, उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो बताया स्पीड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करना है, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसमें बोरिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी हम सेंटेंस अगर हम शुरुआत करते हैं हमारा भाषण, क्योंकि स्टार्टिंग के जो एक से डेढ़ मिनट या दो मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, उसी के द्वारा हम लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर सचिन हमेशा स्टार्ट करते हैं तो कहानी से स्टार्ट करते हैं, तो दुनिया में भी जैसे लोग होते हैं, कई लोग शायरी से स्टार्ट करते हैं, कई लोग जोक्स आदि से स्टार्ट करते हैं, कई लोग क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो मेन ये का लक्ष्य यही होता है कि लोगों के ऊपर अपनी अपने, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो अपना इम्प्रेशन या प्रभाव कैसे हम लोगों पे जमा सकते हैं, या लोगों को किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हैं और आगे किस प्रकार से बोलने वाले हैं, जैसे होटल में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड होता है ना, तो उस पर से मालूम पड़ जाता है कि होटल में क्या क्या अवेलेबल है। तो हम जिस प्रकार से अगर हमारा हम बोलना शुरू करेंगे तो उस पर से मालूम पड़ते जाएगा कि हम आगे क्या क्या बोलने वाले हैं इसमें। ये मेरे को निकलना पड़ेगा पॉइंट से। नहीं, एक पॉइंट भूल गया था। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो डोज हम जो बोल रहे हैं वो कभी भी हैवी डोज नहीं होना चाहिए। हैवी डोज माना हम ऑडियंस जो सभा में लोग बैठे, किस टाइप के लोग बैठे हुए उस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, हाँ उस प्रकार से नॉलेज देना चाहिए। एक बार एक स्कूल में एक टीचर प्रिंसिपल होता है तो स्कूल के सभी पेरेंट्स को बुलाता है और देखता है कि सभी तो गांव के लोग बैठे हुए, इतना किसी को कुछ आता नहीं, तो अपना इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है वो बीच बीच में ऐसे। तो उसमें एक माता जी खड़ी होती है, बोलती है नहीं नहीं सर आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करोगे तो हमारे बच्चे क्या बच्चे हैं ना, बच्चों का तो नटुरे ऐसा ही होता है, तो हम क्या करेंगे अभी, उनका नटुरे तो कोई चेंज कर नहीं सकता है। तो वो सर सोचता है अरे माता जी ये कौन सा शब्द बोल रही है नटुरे, तो कोई याद ही नहीं आ रहा है ऐसे करके। फिर दूसरी भी माता जी खड़ी होती है, हाँ ये माता जी सही कह रही है, अगर आप नटुरे बच्चों का चेंज नहीं कर सकते, हर एक का नटुरे अलग होता है, अगर नटुरे नहीं चेंज होगा तो उनका फटुरे कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर वो टीचर सोचने लगता है नटुरे फटुरे क्या होता है शब्द है, तो कुछ पूछता नहीं क्योंकि पूछेगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, भाई आप कौन से शब्द, ये कहाँ से शब्द आया। फिर एक महीने के बाद जब दोबारा उनका सेशन होता है तो उसमें फिर वो पूरा डिक्शनरी देखता है, भाई ये शब्द कहीं मिले ही नहीं, नटुरे फटुरे कहाँ पर है। तो उसके बाद में फिर जब नेक्स्ट सेशन होता है तो उसमें वो माता जी को बाद में बुलाता है कि आप ये नटुरे बोले थे आपको इसकी स्पेलिंग आती है, तो बोलती हाँ आती है, तो बोला लिख के दो, तो लिखती है NATURE नेचर, और फटुरे FUTURE फटुरे। तो ऑडियंस को देख के ही हमें हमारा भाषण देना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सारा उनके सर पर से जो है बाउंस चले जाए और उनको पता ही नहीं पड़े कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जैसे सुशील भाई ने भी उनके सेशन में कहा था, एग्जांपल देते हैं कि सामने कौन बैठा हुआ है उसके हिसाब से हमारा होना चाहिए। अगर जिस भी लेवल के लोग बैठे, जैसे साइंटिस्ट कोई लोग बैठे हैं तो उनको हम साइंस की भाषा के हिसाब से समझा सकते हैं। जैसे कोई अगर डॉक्टर्स बैठे, अगर हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो हम उन्हें उनकी भाषा के हिसाब से समझा सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ बोलते जा रहे और वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, तो ये चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट जो है वो जो है, जो हम हमको जब कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो या भाषण करने के लिए कई बार कहा जाता है कहीं पर भी, तो हमें उन्हें ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि हमारे पास टाइम जो है बहुत कम था, हमें तो दो दिन पहले ही दिया था, एक दिन पहले ही दिया था, और इतने शॉर्ट टाइम में हम कैसे तैयार करें। नहीं, इंस्टेंट मेथड यहाँ पे जो चलती है वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो भाषण की बात बोल रहे हैं कि अब पब्लिक में जो बोलते हैं, ऑडियंस सब लोगों के बीच में बोलते हैं जनरल प्लेस में, तो उसमें हमें ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि हमें टाइम कम मिला, हम प्रिपेयर कर ही नहीं सके। अगर हम ये हमें उन्हें एक्सक्यूज देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम या तो भाषण पूरी तरह से रेडी करके नहीं आए हैं, जो हमको जैसे हो गया बस चालू इसमें बस बोलना है इसलिए हम उस प्रकार से रेडी करके आए, तो ये जो है इम्प्रेशन हमारा खराब करता है कि भाई हमें ज्यादा टाइम नहीं मिला और बस हम बोल रहे हैं इस प्रकार से। क्या मानते हैं? अब प्रेस्टीज इशू है, लेकिन ये भाषण बोलने की, हाँ जो यहाँ पे कला चल रही है उसमें कि है कि हमें किस प्रकार से अपना भाषण अच्छा बनाना है, तो उसमें आता है कि हमें एक्सक्यूज नहीं देना है। आप भले शॉर्ट बोलो लेकिन स्वीट बोलो, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है उसमें। नेक्स्ट जो है, जो कई बार जैसे हम कोई अगर जोक्स वगैरह बोलते हैं तो उसके बाद लोग जो है हंसना शुरू कर देते हैं उस पर या कुछ कॉमेंट देते हैं, तो लोगों को हंसने देना चाहिए, उनका पूरा होने के बाद में ही आपको अपना जो आगे जो सेंटेंसेस शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग हंस ही रहे उसके बाद में आप फिर बीच में बोलना शुरू कर रहे, तो उससे आपका भी कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है और लोगों को भी कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो आपका आवाज सुन के वो चुप बैठ गए, लेकिन बाजू वाले जो हंस रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, आधी बात भूल जाएंगे या माइंड के ऊपर से चली जाएगी कि ये क्या बोल रहे हैं करके। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को जो हंस रहे अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उन्हें बोलने देना चाहिए। हाँ, जो जो बोलता है उसे मुस्कुराना चाहिए, उसे ज्यादा हा हा करके नहीं हंसना चाहिए, उसे हमारी इंप्रेशन खराब होती है। जैसे कई बार देखते भी ना हम, जो अलग अलग स्पीकर्स जो होते हैं वो जोक्स वगैरह भी सुनाते हैं, अगर किसी ने कुछ प्रश्न पूछा तो उसका जवाब देते हैं तो उसमें वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए जोर जोर से। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे किसी में भी, कई लोगों में होता है कि कोई भी बात बोलते हैं, कोई याने याने बार बार बोलते रहेंगे, याने याने, कोई कोई जैसे मैं सुना रहा था ना, हम ये सुन रहे थे, तो हम कहाँ थे, मतलब एक ही शब्द जो है बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो जो एक ही शब्द जो है बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। हमारे वाणी के ऊपर या हमारे बोलने के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, किन लोगों के सामने बोल रहे हैं, वो बात जो है बहुत इसमें मायने रखती है। जैसे मेरा भतीजा है, बाबा भाषण नहीं देते ना, बाबा तो बच्चों के सामने बात करते हैं। स्पीकर, हाँ स्पीकर, हाँ वो भी नहीं बोलना चाहिए, हाँ वो अलग अलग होना चाहिए कहा। अलग अलग, जैसे मैं बता रहा था कि मेरा भतीजा है जो, उसको आदत है कुछ भी बात बोलेगा तो बोलेगा फिर बोलूं फिर बोलूं, तो हमने उसका एक समय नाम ही रख दिया था फिर बोलूं। तो थोड़े दिन के बाद में उसकी आदत ठीक हो गई, फिर उसने वो शब्द ही बोलना बंद कर दिया, फिर बोलूं फिर बोलूं। जैसे यहाँ डॉक्टर विनय लक्ष्मी आती थी ट्रांसलेशन करने के लिए, तो जब ट्रांसलेशन होता था तो मुरली में जैसे जो स्पीकर है जो मुरली पढ़ रहा है, वो मुरली के अलावा अगर कोई बात दूसरी बोलता था तो उसमें वो तुरंत बोलती थी कि दिस इज आउटसाइड फ्रॉम मुरली, नॉट फ्रॉम द मुरली। और जब वो दोबारा मुरली पढ़ना शुरू करता था और फिर वो बोलती थी कि नाउ इट्स नाउ बैक टू मुरली, फिर वहां से बोलना शुरू कर देती थी। तो कोई भी शब्द जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट करने से फिर अच्छा नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है लिया है कि कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, हमें इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। कि कई बार जैसे भाषण दिया और हम जा रहे हैं कि अरे आपने क्या दे दिया, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है, कहाँ आपने खड़ा कर दिया, ये कर दिया। तो ऑडियंस में ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, उससे हमारी इंप्रेशन खराब होती है। बाद में भले बोला नहीं बाद में, लेकिन जो मेन ऑडियंस है उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे ना फिर आगे के लिए नहीं, वैसे ही नम्रता ठीक नहीं दिखा ना फिर, है ना, हमारा इंप्रेशन खराब होता है, लोग अगली बार से सोचेंगे कि भाई इन्हें बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। तो उस प्रकार से ज्यादा नम्रता भी दिखाना ठीक नहीं है, जहां दिखाना चाहिए समय के हिसाब से उतनी ही नम्रता दिखानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हम जो भी टॉपिक पे भाषण दे रहे हैं जो भी बोल रहे हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हमें लग रहा है कि हमें सब कुछ आता है और ऑडियंस को कुछ आता नहीं है, और हम ऐसी कोई बात बोल दें और ऑडियंस में से अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो उसका जवाब ही हमें पता नहीं हो, फिर हम उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या जवाब देना चाहिए। तो जो भी आप बोल रहे हैं उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना हमारे पास बहुत जरूरी है, ए टू जेड हर एक चीज, जहां तक आप बोल सकते हैं या जितना आप याद कर सकते हैं या जो भी आप बोल रहे हैं जिस भी टॉपिक पर आप बोल रहे हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। या कोई प्रश्न भी पूछते हैं तो ऐसा ये सोचकर ही चलना चाहिए कि हो सकता है कि ये प्रश्न पूछने के बाद और भी कोई दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, तो उसके लिए भी हमें रेडी होना चाहिए। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है, भाषण में कभी भी क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहिए, कि हम खुद से लोगों को बोले भाई किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछो, क्वेश्चन आंसर नहीं करना। अगर कोई खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका जवाब दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन खुद से हमें क्वेश्चन, क्योंकि हम भाषण दे रहे हैं वहां पे लोगों पे, जो हमारी जो हमको बताया गया उसके हम बता रहे लोगों की हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ना, कि आप प्रश्न पूछिए हम उसके बाद में अपना जवाब देंगे। कोई खुद से प्रश्न पूछ रहा है आप उसका जवाब दे रहे हो बात अलग है, लेकिन कई बार ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तो उससे ये होता है कि हमारा जो मेन थीम जो है हम जिस टॉपिक पे भाषण दे रहे हैं हो सकता है कि वो स्लाइड में रह जाए। हमें आधे घंटे का समय दिया है लेकिन आधे घंटे में हमारा 15-20 मिनट जो है लोगों के प्रश्न उत्तर जवाब देने में ही चले गया, तो उस समय हम युक्ति से उन्हें बता सकते हैं या इस प्रकार से कुछ कह सकते हैं कि बाकी के लोग ही उन्हें खुद कहे कि भाई इन्हें आप इन्हें बाद में पूछ लेना, ये भाषण होने के बाद में जाके मिलके आप पूछ लेना। लेकिन उस समय जो है हमें खुद से लोगों को इन्वाइट नहीं करना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछे और हम इसका आंसर देंगे, क्योंकि आप वहां पे मैसेज जो है डिलीवर करने के लिए बैठे हुए, अपने जो बताना चाहते अपनी भावना या जो भी बात है वो बताना चाहते हैं, वहां पे आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे। हाँ स्पीच भी भूल जाए तो उसके बाद में फिर हमें ही प्रॉब्लम होती ना। वो बात अलग है ना, उसके लिए आप युक्ति से कुछ कर सकते हैं, जैसे आइस ब्रेकिंग पॉइंट्स बोलते हैं तो उसमें आप बीच में कोई जोक्स वगैरह सुना सकते हैं या कहीं से भी, लेकिन उसके लिए कहा कि पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट जो है जैसे बता दिया कि बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है अगर लोग कुछ बात बोलते हैं तो उस बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हें नजरअंदाज कर दे कोई कुछ बोल रहा है और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दें, उनकी बात सुने हम पूरा, उसके बाद में अगर जहां पे लगता है तो उसका जवाब दे, जहां पर नहीं लगता तो वहां पे हम स्किप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप बाद में आके पूछिए, तो उनके बातों को सुनना भी जरूर है। और नेक्स्ट इसमें जो रिलेटेड पॉइंट है कि ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहिए किसी विशेष समाज पर या किसी विशेष जाति पर, किसी विशेष व्यक्ति पर कोई भी उल्टा सुलटा कमेंट नहीं करना चाहिए। एक यहाँ का एक भाई विदेश में गया कहीं पर और वहां से आने के बाद में फिर यहाँ क्लास में अनुभव सुना रहा था कि वहां तो सब लोग एकदम ऐसा खाना खाते हैं, खराब खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, ये सब कोई खाने वाली चीजें हैं क्या ऐसे वैसे। तो उस देश के लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम कसम लेते कि आज से इस भाई को दोबारा हमारे देश में बुलाएंगे ही नहीं करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना किसी भी विशेष व्यक्ति की। हर एक का स्टाइल अलग है, हर एक का रहने का ढंग अलग है, हर एक का खाना पीना अलग है। जो जिस जगह पे रहता है उसके हिसाब से उसका खाना पीना होता है। साउथ वाले हैं तो चावल वगैरह ज्यादा खाते हैं क्योंकि उन्होंने उस जगह के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अपने शरीर को ढालना है, उस हिसाब से बनाना है। वहां पे अगर वो रोटी या ये खाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वही आप नॉर्थ में चले जाइए, वहां के लोग रोटी वगैरह ज्यादा खाते हैं ना, वहां पे आप बोलेंगे उनको चावल खाओ तो नहीं मानेंगे। तो हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का सब कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से किसी भी इस पे हमें जो है स्पेशल या अलग से कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में तो मीडिया वाले बैठे ही होते हैं, कुछ ना कुछ आपका महिमा करनी चाहिए जो भी। एक व्यक्ति जो है उसमें ट्रेन में जा रहा होता है तो वो रोटी खाने वाला होता है, तो उसके साथ बाजू में होता है चावल खाने वाला मद्रास ही बैठा होता है, तो वो बैग उठाने जाता है तो उठती नहीं है बैग उसे, तो उसको बोलते हट साइड में, तो वो उठा देता है बैग को, बोलता तो वो रोटी खाने वाला बोलता है रोटी खाओ ताकत आएगी बोलता है, फिर आगे और जाता है, फिर उसको बैग ऊपर रखनी होती तो उससे उठती नहीं है जो चावल खाने वाला होता है, तो फिर वो उठा के रखता है, बोलता है रोटी खाओ ताकत आएगी। वो सोचता है अभी क्या करूं, तो वो जानबूझ के चेन जो होती ना वो खींचना शुरू करता है, तो बोलता है हट बाजू में, तो जोर से चेन खींच देता है, फिर वहां से टीसी आ जाता है, बोले चेन किसने खींचा, हाँ इसने, हाँ लगाओ 2000 रुपए पेनल्टी, चावल खाने वाला बोला चावल खाओ दिमाग आएगा बोलते। तो ये नॉर्मल इसमें बताया, किसी गलत इसमें नहीं लेना इसको, एक नॉर्मल जोक थे। मतलब कहा है कि किसी भी विशेष समुदाय, किसी विशेष व्यक्ति पे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलने चाहिए। उसके बाद में जो है आते हैं हम माइक के ऊपर। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो जो माइक लगाने वाला होता है उसे पता होता है कि माइक कितने दूरी पे लगाना है, किस प्रकार से लगाना है ना। माइक को लेके बार बार उसके साथ में खेलना नहीं शुरू करना चाहिए। कुछ लोग वायर पकड़ के बोलना शुरू करते तो वायर ही लपेटते जाते, सारा वहां की वायर यहां खींच लेते सारी। वैसा नहीं होना चाहिए कि माइक लगाने का नियम होता है कि माइक जो है हमारी जो चीन है इसके पास में होना चाहिए ताकि नाक की हवा उसमें ना जाए, और 4 से 5 इंच का गैप होना चाहिए। अगर हमारा आवाज नहीं भी जा रहा है ऑडियंस में तो माइक लगाने वाला जो है वो व्यक्ति आके ठीक करेगा। वो आपको ज्यादा उसमें अपना रिसर्च नहीं करना चाहिए, जो है उसके हिसाब से माइक के इसमें बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया माइक का पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके लिए जैसे बताया कि बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। जैसे बताया कि मिरर के सामने या कहीं पर भी लोगों के बीच में, जैसे जगदीश भाई भी दादियों को या हमारी सीनियर बहनों को प्रैक्टिस कराते थे कि अगर आप भाषण करने जाते हैं तो लोगों के सामने किस प्रकार से आप बोलेंगे, तो बिना प्रैक्टिस के कभी भी लोगों के सामने नहीं जाके बोलना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कभी भी लेट नहीं पहुंचना चाहिए, जो हमको टाइम दिया है उस टाइम के हिसाब से पहुंचना चाहिए। कई बार इंडिया में लोग देखते हैं विदेशी आते तो हमेशा कहते हैं इंडियन टाइम 10 का टाइम है माना, वो बोलेंगे 10:30 बजे, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं चलता। विदेश में लोग जो है प्रॉपर टाइम पे पहुंचते और पूरे टाइम पे ही वहां का हर सेशन पूरा होता है। तो ऐसा नहीं कि हम लेट पहुंचे और हमारे वजह से भाषण जो प्रोग्राम है वो लेट चालू हो, सारा का सारा जो आगे पूरा लेट हो जाए, तो कभी भी लेट नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ टाइम, हमें कितना टाइम दिया गया है आधा घंटा उसके हिसाब से ही हमें हमारा भाषण रेडी करना चाहिए। चाहिए तो 5-10, अगर जैसे विदेश में हम देखते हैं ना, अगर उनको 7 से 7:30 बजे का टाइम दिया, जैसे मुरली भी वो सुनते हैं 7:30 बजे 2 मिनट होते ही सारे उठने शुरू हो जाते हैं। लास्ट में ऐसा होता है कि 2-4 लोग ही रह जाते हैं, पहले 100 लोग होंगे 7 बजे, लेकिन 7:30 बजे के बाद में 7:35 को देखेंगे तो मुश्किल है 2-4 लोग ही बचेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम की बहुत वैल्यू होती है। अगर हम ज्यादा खींचेंगे किसी बात को तो हो सकता है जो हमारे बाद में जो बोलने वाला है उसे टाइम कम पड़ जाए। तो जितना हमको टाइम दिया, जैसे आप बोल रहे थे ना टाइम का, तो उसके हिसाब से हमारा भाषण रेडी होना चाहिए कि हमें कितना देर बोलना है। भले 5 मिनट या 2 मिनट पहले आप खत्म कर दो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम जो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो हमें पहले से बता देना चाहिए कि मैं 2-5 मिनट ज्यादा बोलूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है इस वजह से। नहीं, वो होता है तो वो इंडियन टाइम है ना, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। विदेशी आने पे भी यहाँ ऐसे हो जाते हैं। एक बार एक विदेशी को कहा 10 बजे आओ ऑफिस में, तो आया 10:15-10:30 बजे। मैं राह देख के निकल गया तो मुझे लगा कि नहीं इंडियन टाइम है ना, ऐसा ही चलता है, तो वो भी यहाँ आने पे वैसे हो जाते। तो वैसा नहीं होना चाहिए, टाइम की बहुत वैल्यू होनी चाहिए। तो कभी भी जो है अवेयरनेस ऑफ टाइम होना चाहिए कि हमें कितना टाइम दिया गया है उसके हिसाब से हमारा भाषण रेडी होना चाहिए। कई बार देते भी है ना भाषण तो बताते हैं, आप पूछना चाहिए कि हमें कितना मिनट बोलना है, आधा घंटा बोलना है, 1 घंटा बोलना है, 15 मिनट बोलना है, उसके हिसाब से हमारे पॉइंट जो है रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हमारी थीम या हमारा जो ट्रैक है वो ट्रैक को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो भी हमें पॉइंट या भाषण के लिए दिया गया कि इस पॉइंट पे आपको बोलना है, तो अगर हम ट्रैक भूल जाएंगे तो जाना शुरू होएंगे अहमदाबाद और पहुंच जाएंगे दिल्ली, यहाँ वहाँ गलियों में भटकते रहेंगे। तो हमारे ओरिजिनल ट्रैक को हमेशा याद रखना है और उसके हिसाब से ही हमारा भाषण बनाना चाहिए। ट्रैक भूलने से फिर क्या होगा, ऑडियंस को भी मजा नहीं आएगा, लोग बोलेंगे देखो ये कौन से इस पे शुरू किया बोलने के लिए ब्रह्मचर्य के ऊपर और पहुंच के साइंस के इसके ऊपर। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे ट्रैक जो है हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे मेन पॉइंट जो आता है जो है स्टैंडिंग पोस्चर। अगर आप खड़े रह के भाषण कर रहे हैं तो उस भाषण करते समय किस प्रकार से हमारा चलना स्टेज पर होना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि पूरी स्टेज खाली होती है, आपके हाथ में माइक दिया जाता है और आपको चलते फिरते बोलना है, तो एक ही जगह खड़े रहकर नहीं बोलना है, जहां तक हो सके मूवमेंट करते हुए यहां से वहां दोनों साइड में स्टेज के। ऐसा भी नहीं कि आप पूरा ही चलते फिरते रहे, एक जगह जाए थोड़ा देर खड़े रहे फिर दूसरी जगह जाके थोड़ा देर खड़े रहे, उस प्रकार से मूवमेंट होती रहनी चाहिए। तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि लोगों को आदत होती है कि कोई जेब में बार बार हाथ डाल रहा है, कोई बार बार पेन कोई टच कर रहा है, कोई बालों में खुजली कर रहा है, कोई हाँ कोई क्या कर रहा है, एक हाथ से बोल रहे, उसके ऊपर भी हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। अगर आपने देखते हैं कि राइट हैंड में माइक पकड़ा है और फिर माइक बोलेंगे राइट हैंड उठाओ तो खुद भी हाथ उठा देंगे माइक के साथ में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बोलेंगे राइट हैंड उठाओ और खुद लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। पूरा हमारे इस पे ध्यान होना चाहिए कि हम किस टॉपिक क्या बोल रहे हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं। तो हमारे जो स्टैंडिंग पोस्चर जो है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें निर्भर होती है। उससे हमें जो जैसे बताया फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को ध्यान देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 21 पॉइंट्स। हाँ 21 पॉइंट्स नहीं 21 हो गए। पहला पॉइंट जो बताया कि बोलते समय जो है कि पढ़कर नहीं बोलना है। दूसरा पॉइंट बताया कि एक ही जगह नहीं बोलना है। तीसरा पॉइंट जो बताया कि सेंटेंस हाफ में नहीं छोड़ना है, आधे में नहीं छोड़ना है कोई भी। फोर्थ पॉइंट बताया अपने स्पीड के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, न स्पीड एकदम कम हो न स्पीड एकदम ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया बोरिंग, हाँ बोरिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद का जो पॉइंट बताया जो हम बोल रहे हैं जो लोगों को स्पीच दे रहे, हैवी डोज नहीं होना चाहिए, लोगों के हिसाब से जो लोग बैठे हैं उसके हिसाब से बताना है। उसके बाद में जो बताया नेक्स्ट पॉइंट हंसना, या हम जो बोल रहे हैं लाफिंग, अगर कुछ कमेंट्स दे रहा है तो उसके बाद हमें उतने देर के लिए चुप बैठ जाना है, उस समय भी चुप बैठ जाना है उस समय कोई एक्सक्यूज नहीं देना। उससे हमारा इंप्रेशन खराब होता है कि देखो हम लोग हंस रहे और ये बोलना शुरू कर रहे, हम अपने आप को कम समय दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ढकना चाहते हैं, हम कवर करना चाहते हैं, तो उस समय वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया कि कोई भी बात रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं बोलते रहना चाहिए लोग ताली बजाते हैं, हाँ जैसे ना लोग ताली बजाते हैं उस समय भी उनको ताली बजा देना चाहिए, पूरा होने के बाद में फिर आगे बोलना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया कि अपने आप को कम नहीं बताना चाहिए कि भाई आप हमको तो आता ही नहीं था और आपने इस पॉइंट पे दे दिया और हम बोल रहे हैं, ज्यादा भी नहीं बताना चाहिए बैलेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, हम जिस भी टॉपिक पर या पॉइंट पे भाषण देने जा रहे हैं उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करना है हमें, उसमें लोगों से प्रश्न नहीं पूछने कि आप सवाल पूछिए और हम उसका जवाब दें। नेक्स्ट जो पॉइंट जो इसमें बताया कि ऑडियंस में से अगर हम जैसे किसी के ऊपर स्पेशल कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करना चाहिए कि किसी जाति या समुदाय के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना है, और अगर लोग कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात पूरी करनी देनी चाहिए, उनका बात सुनना चाहिए, उसके बाद में आगे बोलना शुरू करना चाहिए। उसके बाद जो माइक के बारे में बताया कि माइक को लेकर खेलना नहीं है, माइक जो लगा हुआ है उसके हिसाब से उसको रहने देना चाहिए। अगर हमारी आवाज कम ज्यादा होती है तो जो माइक लगाने वाला है वो खुद ही आकर माइक लगाएगा और अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, उसमें हमें अपना जो है माइंड नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया कि उसके लिए भाषण करते समय प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए मिरर के सामने खड़े रह के, या जहां पर भी लोगों के दो चार लोग जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, या अकेले में भी हम कर सकते हैं, या खुद का भाषण हम खुद ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और सुन सकते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोलना है। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया कि कभी भी लेट नहीं पहुंचना चाहिए, जहां पे हमें टाइम दिया है कि इस समय आपको भाषण करने शुरू आना है या इस समय आपका भाषण शुरू होने वाला है, इस समय ये प्रोग्राम शुरू होना है, तो उस समय लेट नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट जो बताया कि अवेयरनेस ऑफ टाइम, वो नहीं करने में बोला ना आपने तो वो कैसे आएगा फिर हाँ वो कौन से टाइप की ऑडियंस है, ये किस प्रकार का स्टेज जो है, लेकिन आपने नहीं बताया इसलिए इसमें डाला नहीं है वो। नेक्स्ट वो आएगा भाषण करते समय क्या करना चाहिए, टीम में जो है थीम, हमारा जो ओरिजिनल ट्रैक है या थीम है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, उसी ट्रैक के ऊपर हमें कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ वहाँ से बातें आएंगी, उन्हें उनका जवाब दो, लेकिन ओरिजिनल ट्रैक को कंटिन्यू करना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट बताए, स्टैंडिंग पोस्चर जो है, स्टैंडिंग पोस्चर के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम स्टेज पर है ना। बाबा हमेशा मुरलियों में कहता है कि तुम सब वर्ल्ड स्टेज पर हो, तो उस भी जब हम स्टेज पर होते हैं तो हमारी हर एक चीज जो है लोग नोट करते हैं, हम किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से हंसते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है या जो भी आप कर रहे हैं। कई बार कोई लेडीज वगैरह होती तो वो साड़ी कोई उंगली में गोल गोल घुमाते रहेंगी, कोई क्या क्या करते रहेंगे, बहुत सारी चीजें होती। तो हम स्टेज पर है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि सारी नजरें जो है हमारे ऊपर है, हम भले किसी को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, लेकिन सब लोग हमें देख रहे हैं और हर एक चीज को हमारे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, वो पसीना पोछ सकते ना, पसीना पोछ सकते। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे, 21 पॉइंट, कि भाषण करते समय कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। 21 हुआ। ओम शांति।